पृष्ठ संख्या 15, शीर्षक है धर्म दर्शन का अन्य विषयों से संबंध। इसके अंतर्गत बिंदु अ शीर्षक है धर्म दर्शन एवं धर्मशास्त्र। गैलवे के शब्दों में धर्मशास्त्र धार्मिक विश्वासों और सिद्धांतों से जुड़ी हुई वह व्यवस्था है जो किसी ऐतिहासिक धर्म से विकसित होती है। इसका उद्देश्य विशिष्ट धर्म के सत्यों का प्रतिपादन करना है। विशिष्ट धर्म अपने धर्म शास्त्र से ही निर्देशित और क्रियाशील होते हैं। धर्म शास्त्र अपने धर्म ग्रंथ तथा श्रुति में विश्वास करता है। इनमें श्रद्धा और निष्ठा रहती है। वह उनकी जांच नहीं करता बल्कि उनके प्रति आस्थावान होता है। धर्मशास्त्र अपने धर्म के प्रति किए गए आक्षेपों का समाधान करता है। जितने भी ऐतिहासिक धर्म हैं उनका अपना अलग अलग धर्मशास्त्र भी होता है, जैसे हिंदू धर्मशास्त्र, मुस्लिम धर्मशास्त्र, ईसाई धर्मशास्त्र आदि। यही नहीं, इनके और भी संकीर्ण रूप होते हैं, जैसे हिंदू धर्मशास्त्र में वैष्णव धर्मशास्त्र, ईसाई धर्मशास्त्र में कैथोलिक धर्मशास्त्र और प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्र। पृष्ठ संख्या 16। ऐतिहासिक दृष्टि से धर्मशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राकृतिक धर्मशास्त्र, दूसरा है प्रकाशित धर्मशास्त्र। प्राकृतिक धर्मशास्त्र में धर्म का बौद्धिक या दार्शनिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है और प्रकाशित धर्मशास्त्र में अलग अलग धर्मों के धार्मिक विचार व्यक्त किए जाते हैं। इसमें तर्क और विवेचना का अभाव रहता है। इसका मूल आधार विश्वास है। धर्म ग्रंथों में विश्वास रखते हुए ही किसी समस्या का समाधान किया जाता है, जैसे मुसलमान या ईसाई कुरान या बाइबिल के आधार पर ही समस्या का समाधान ढूंढते हैं। इसीलिए प्रकाशित धर्मशास्त्र को हठवादी धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इसके विपरीत प्राकृतिक धर्मशास्त्र में तर्क और विवेचन की प्रधानता होती है, इसलिए इसको धार्मिक दर्शन की भी संज्ञा प्रदान की जाती है। परंतु बहुत से विचारक धर्मशास्त्र के इस भेद को स्वीकार नहीं करते। धर्मशास्त्र की रूपरेखा से स्पष्ट हो जाता है कि धर्म दर्शन और धर्मशास्त्र में कई रूपों में भिन्नता है। अब हम धर्म दर्शन एवं धर्मशास्त्र की भिन्नता को तुलनात्मक रूप से सारणीबद्ध तरीके से समझेंगे। धर्म दर्शन में पहला है, धर्म दर्शन का क्षेत्र व्यापक है। इसमें धर्म का दार्शनिक विवेचन होता है। अब धर्मशास्त्र में है, पहला, धर्मशास्त्र का क्षेत्र संकीर्ण है। विशिष्ट धर्मों का अपना अलग अलग धर्मशास्त्र होता है और उसी के आधार पर धर्म का अध्ययन किया जाता है। अब धर्म दर्शन में बिंदु दूसरा है, धर्मशास्त्र की अपेक्षा धर्म दर्शन का स्थान द्वितीय स्तर पर है। धर्मशास्त्र धर्म दर्शन की सामग्री है जिसके आधार पर ही वह धर्म के दार्शनिक पक्ष का निरूपण करता है। इसलिए धर्म दर्शन अमूर्त, ज्ञानमूलक और तर्कयुक्त होता है। इसमें ईश्वर की प्रत्यात्मक व्याख्या की जाती है। अब धर्मशास्त्र के अंतर्गत दूसरा बिंदु है धर्मशास्त्र का स्थान धर्म दर्शन की अपेक्षा प्रथम माना जाता है, क्योंकि धर्म दर्शन इसके अभाव में धार्मिक विषयों पर विचार नहीं कर सकता। धर्मशास्त्र ईश्वर को भावनामूलक आधार पर स्वीकार करता है। ईश्वर मूर्त रूप में विश्वास का आधार होता है, अर्थात ईश्वर चिंतन प्रत्यय के आधार पर नहीं किया जाता। धर्मशास्त्र ईश्वर को वास्तविक मानते हुए इसमें आस्थावान होता है। ईश्वर के प्रति विचार सजीव होते हैं। अब धर्म दर्शन में तीसरा बिंदु है धर्म दर्शन ईश्वर विहीन धर्मों की भी दार्शनिक मीमांसा करता है। इस प्रकार सभी प्रकार के धर्म धर्म दर्शन के विषय के अंतर्गत आते हैं। अब धर्मशास्त्र में तीसरा है धर्मशास्त्र ईश्वर केंद्रित होता है। इसके अनुसार ईश्वर विहीन धर्म धर्म की श्रेणी में नहीं आता। धर्म दर्शन में चौथा बिंदु है धर्म दर्शन में धार्मिक सत्य का निर्धारण बुद्धि और तर्क के आधार पर किया जाता है। अब धर्मशास्त्र में चौथा बिंदु है धर्मशास्त्र में श्रुति स्मृति परंपरा विश्वास और श्रद्धा का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। धार्मिक सत्य श्रद्धा का विषय है। तर्क द्वारा धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए धर्मशास्त्र में चमत्कार को भी स्थान है। पृष्ठ संख्या 17 धर्म दर्शन के अंतर्गत बिंदु 5वां है धर्म दर्शन दर्शन एवं धर्म शास्त्र के बीच स्थित है। दार्शनिक दृष्टि से धर्म की आलोचना करता है और दूसरी ओर धर्म शास्त्र से धर्म की सामग्री प्राप्त करता है। धर्म शास्त्र में 5वां बिंदु है धर्म शास्त्र अपनी सामग्री विशिष्ट धर्म के अंतर्गत ही प्राप्त करता है। उसके परे जाना धर्मशास्त्र का लक्ष्य नहीं है। धर्म दर्शन में 6वां बिंदु है धर्म दर्शन का लक्ष्य व्यवहारिक नहीं है, वह धार्मिक अनुभवों की स्वतंत्र व्याख्या एवं आलोचना करता है। यह किसी धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए धर्म का विवेचन नहीं करता और न तो किसी विशिष्ट धर्म की श्रुति पर ही आधारित होता है। अब धर्मशास्त्र में बिंदु 6वां है धर्मशास्त्र का लक्ष्य व्यवहारिक है, वह धर्म का प्रचार और समर्थन तथा धार्मिक मूल्यों का संरक्षण इसलिए करता है कि उस धर्म के समर्थकों का उससे कल्याण हो। वह श्रुतियों का समर्थन करता उसमें आस्था और विश्वास प्रकट करता है। अब धर्म दर्शन में बिंदु 7वां और अंतिम बिंदु है धर्म दर्शन धर्म की रहस्यमयता को प्रकट किए बिना नहीं रहता, उसका तार्किक उत्तर देने का प्रयास करता है। अब धर्मशास्त्र में अंतिम बिंदु 7वां है धर्मशास्त्र धर्म विशेष की रहस्यमयता को ज्यों का त्यों मानकर चलता है, उनके उत्तर के लिए प्रयास नहीं करता। जैसे ईसाई धर्मशास्त्र यह मानकर चलता है कि क्राइस्ट 3 दिन कब्र में रहकर जीवित हो गए, इसका प्रमाण बाइबिल है। अगला शीर्षक है संबंध। धर्म दर्शन और धर्मशास्त्र में अंतर होते हुए भी यह नहीं समझा जा सकता कि इन दोनों में विरोध है। वस्तुतः दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें पर्याप्त रूप से निकट का संबंध देखा जाता है। जैसे पहला है शीर्षक बौद्धिकता एवं विश्वास। धर्म दर्शन धर्म का बौद्धिक विवेचन करता है और धर्मशास्त्र धार्मिक मूल्यों के प्रति विश्वास रखकर चलता है। मूल्य की दृष्टि से यदि धर्मशास्त्र विश्वास को प्रमुख आधार मानता है तो इससे किसी प्रकार की हानि नहीं होती। धर्म दर्शन धर्म की कितनी भी बौद्धिक विवेचना करे परंतु मूल्यों में आस्था रखना अनिवार्य सिद्ध होता है। अनिश्वरवादी धर्म भी मूल्यों के प्रति आस्थावान होते हैं। सिद्धांतों का पालन आस्था और विश्वास से ही संभव है। हमारा व्यवहारिक जीवन विश्वास पर ही आधारित है। गैलवे के शब्दों में बौद्धिकता की प्रक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती। जहां तर्क एक सीमा तक अंत में स्वयं सिद्ध सिद्धांत पर आकर रुक जाता है, वहां बुद्धि उन सिद्धांतों में विश्वास करके ही आगे बढ़ती है। अतः इस स्तर पर धर्मशास्त्र तथा धर्म दर्शन में श्रेणी या मात्रा का भेद है। एक विश्वास को अधिक महत्व देता है तो दूसरा तर्क को, परंतु तर्क बिना विश्वास के काम नहीं कर सकता और विश्वास तर्क से अपना उचित संबंध रखता है। अगला शीर्षक है, दूसरा संबंध है धर्म दर्शन अपनी सामग्री के लिए धर्मशास्त्र पर निर्भर है। धार्मिक अनुभवों और सत्यों की प्राप्ति धर्मशास्त्र से ही होती है। उसी का धर्म दर्शन बौद्धिक दृष्टि से विवेचन प्रस्तुत करता है। प्रोफेसर एडवर्ड ने ठीक ही कहा है कि यदि धर्म दर्शन धर्मशास्त्र को आधार मानकर उसकी आलोचना और बौद्धिक मीमांसा नहीं करता तो वह एकमात्र बौद्धिक चर्चा का विषय बनकर रह जाता है और उसका जीवन से संबंध नहीं रह जाता। यह किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज मात्र होता है और वह नितांत कृत्रिम ज्ञाता होता है। उदाहरण के लिए कांटे का मानवतावादी धर्म, ऐसा धर्म जो जल थल में कभी नहीं था और न जिनमें वास्तविक धर्म की सृजनशीलता तथा उत्तेजना ही प्राप्त होती है। धर्म दर्शन का महत्व इसीलिए है कि वह धर्मशास्त्र के चिरंतन सत्य पर आधारित है। अतः धर्म दर्शन और धर्मशास्त्र नितांत रूप से भिन्न नहीं कहे जा सकते। पृष्ठ संख्या 18। अगला शीर्षक है, बिंदु तीसरा है आध्यात्मिक आधार। धर्म दर्शन और धर्मशास्त्र में संबंध का सबसे बड़ा आधार आध्यात्मिकता है। धर्म दर्शन आध्यात्मिकता को तर्क की कसौटी पर जीवन में स्थान देने का आग्रह करता है। दोनों का लक्ष्य आध्यात्मिकता से दूर नहीं है। अब अगला संबंध है चौथा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अंत में निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि धर्म दर्शन और धर्मशास्त्र एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं। धर्म दर्शन को धर्मशास्त्र पर निर्भर करना होता है और धर्मशास्त्र की दार्शनिक मीमांसा को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि इससे उसे धार्मिकता की स्पष्टता प्राप्त होती है। अगला शीर्षक है धर्म दर्शन एवं तत्वशास्त्र में संबंध। तत्वशास्त्र दार्शनिक शास्त्र की एक प्रमुख शाखा है। इस लौकिक जगत के पीछे तत्व क्या है और उसका क्या स्वरूप है, इसी का उत्तर पाना इसका उद्देश्य है। विश्व तत्व एक है या अनेक, द्वैत है या अद्वैत, चेतन है या जड़, इन प्रश्नों से संबंधित अनेक सिद्धांत भी हैं। तत्वशास्त्र के अंतर्गत उन सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है। जो मत ईश्वर को मानते हैं वे आस्तिक और न मानने वाले को नास्तिक कहलाते हैं। वह मत जो ईश्वर को ही एकमात्र सत्ता मानता है और जिसके अनुसार संसार ईश्वर की अभिव्यक्ति है, उसे सर्वेश्वरवाद कहते हैं। ऐसे ही अनेक प्रश्न तत्वशास्त्र से संबंधित हैं। आत्मा का अस्तित्व, कर्म की स्वतंत्रता तथा अध्यात्मवाद और भौतिकवाद आदि के विचार तत्वशास्त्री दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। धर्म दर्शन इन विषयों से ही संबंध रखता है। इसीलिए हेगेल दर्शन को धर्म ही मानते थे। धर्म दर्शन और तत्वशास्त्र में आकार का अंतर कहा जा सकता है। विषय वस्तु की दृष्टि से दोनों एक ही हैं। तत्वशास्त्र परम सत्ता के रूप में ईश्वर की खोज करता है। धर्म दर्शन भी ईश्वर के अस्तित्व और प्रमाण की विवेचना धार्मिक दृष्टि से करता है। यही नहीं, ईश्वर के स्वरूप, गुण और उसका जगत तथा मनुष्य से संबंध की खोज तत्वशास्त्र और धर्म दर्शन दोनों में की जाती है। ईश्वर और ब्रह्म के संबंध की व्याख्या तथा ईश्वर के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों की मीमांसा दोनों में की जाती है। मूल तत्व के रूप में आत्मा के स्वरूप, अस्तित्व तथा प्रमाण की व्याख्या दोनों के ही विषय हैं। अतः तत्वशास्त्र एवं धर्म दर्शन में घनिष्ठ संबंध है। अगला शीर्षक है अंतर। इसके अंतर्गत पहला है ईश्वर। तत्वशास्त्र मूल तत्व के स्वरूप को जानने का प्रयास करता है, परंतु धर्म दर्शन सभी धर्मों के सामान्य मतों तथा सिद्धांतों को जानने का प्रयास करता है। यदि तत्वशास्त्र ईश्वर की बौद्धिक व्याख्या करता है तो धर्म दर्शन धर्म की दृष्टि से ईश्वर की दार्शनिक विवेचना करता है। धर्मों में ईश्वर भावना, भक्ति और उपासना से जाना जाता है। धर्म दर्शन ईश्वर से संबंधित उन्हीं भावनाओं का बौद्धिक दृष्टि से विवेचन करता है। अब बिंदु दूसरा है पद्धति। तत्वशास्त्र और धर्म दर्शन में अध्ययन की पद्धति की दृष्टि से भी अंतर है। पृष्ठ संख्या 19। तत्वशास्त्र को पद्धति सैद्धांतिक और बौद्धिक है, परंतु धर्म दर्शन की विधि व्यापक दृष्टि पर आधारित है। इसमें केवल बुद्धि का ही नहीं, श्रुति, अंतर्ज्ञान आदि का भी सहयोग लिया जाता है। अब बिंदु तीसरा है धर्म दर्शन का उद्देश्य प्रयोजनात्मक है। धर्म दर्शन धर्म से निकट संबंध रखने के कारण व्यवहारिक दृष्टि को अपनाता है। तत्वशास्त्र तो केवल सत्य का तात्विक विवेचन मात्र करता है। अब अगला शीर्षक है निष्कर्ष। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। वस्तुतः दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित हैं। धर्म दर्शन का केंद्र बिंदु ईश्वर है और ईश्वर तत्व शास्त्रीय धारणा है। इसीलिए कुछ लोगों ने धर्म दर्शन को तत्व शास्त्र की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया है। दूसरी ओर यह भी देखा जाता है कि तत्वशास्त्र धर्म दर्शन पर ही निर्भर है। हम प्रारंभ में ही देख चुके हैं कि धर्म का प्रारंभ मानव में सर्वप्रथम हुआ, इसके पश्चात ही उसका दार्शनिक और तात्विक विवेचन किया जाने लगा। धार्मिक मान्यता पर ही तत्व दर्शन आधारित है, अतः दोनों ही आधारों पर देखा जाता है कि धर्म दर्शन और तत्वशास्त्र एक दूसरे पर आश्रित हैं। अगला शीर्षक है धर्म दर्शन की उपयोगिता या आवश्यकता। इसके अंतर्गत पहला शीर्षक है सर्वधर्म समन्वय। विभिन्न धर्मावलंबी अपने अपने धर्म के पोषक होते हैं, जिसके कारण उनकी आपस में लड़ाई और संघर्ष भी देखा जाता है। मतैक्य के लिए आवश्यक है कि धर्मों का बौद्धिक दृष्टि से विवेचन किया जाए और उनमें सामान्य तत्व को ढूंढ निकाला जाए। वस्तुतः सत्य एक ही होता है, वही विभिन्न धर्मों में प्रतिष्ठित किया गया है। धर्म दर्शन अपनी विवेचना से सत्य का उद्घाटन करके धार्मिकों के समक्ष रखता है। इससे धर्मों की अनेकता एकता में समाहित हो सकती है। धर्म दर्शन धर्म समन्वय का आधार है। दूसरा है धार्मिक विश्वासों और आस्था में दृढ़ता। धार्मिक विश्वास सत्य के अभाव में आस्था परक नहीं भी हो सकते, इसीलिए आवश्यक है कि उन विश्वासों की मीमांसा की जाए जिससे उनका अनावरण हो जाए और धार्मिक व्यक्ति की आस्था दृढ़ हो सके। अगला शीर्षक है बिंदु तीसरा है अंधविश्वास तथा रूढ़िवादिता का लोप। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, वह अपने विवेक से धर्म के उन्हीं तत्वों मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहता है जो अंधविश्वास तथा रूढ़िवादिता से दूर हो। इसके लिए आवश्यक है कि धर्म के तत्वों और मूल्यों को अंधविश्वास और रूढ़ियों से तार्किक विवेचन द्वारा बचाया जाए। धर्म दर्शन का यह कार्य क्षेत्र धर्म में महत्वपूर्ण है, वह धर्म का परिशोधन करता है। चौथा है धर्म को वैज्ञानिकता प्रदान करना। आधुनिक वैज्ञानिक युग में धर्म को तभी स्वीकार किया जा सकता है जब वह तार्किक बौद्धिक एवं वैज्ञानिक आधारों पर सिद्ध किया जाए। इस दृष्टि से धर्म दर्शन का अध्ययन अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि वह धर्म का विज्ञान और दर्शन के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन प्रस्तुत करके धार्मिक सत्य असत्य का निर्णय करता है। पांचवा शीर्षक है धर्म और वास्तविक जीवन। कुछ लोग धर्म को वास्तविक जीवन से दूर मानकर उसकी उपेक्षा और परिहास करते हैं। उनका मंतव्य है कि धर्म का हमारे वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। धर्म दर्शन धर्म का दार्शनिक विवेचन प्रस्तुत करके यह प्रकट करता है कि धर्म हमारे वास्तविक जीवन से दूर नहीं है। धर्म की अनेक वास्तविकताएं तथा मोक्ष या निर्वाण, वासनाओं का परिमार्जन, मूल्यों की अवधारणा, सत्ता में विश्वास आदि केवल मानसिक प्रत्यय मात्र ही नहीं, वरन इनका वास्तविक जीवन में उपयोग और महत्व है। दुख की घड़ियों में धर्म की मान्यताएं व्यवहारिक रूप में कितना संतोष प्रदान करती हैं, इसका महत्व उसी समय ज्ञात होता है। पृष्ठ संख्या 20, छठवां है धार्मिक ज्ञान और मनोवृत्ति में परिवर्तन। धर्म दर्शन के अध्ययन के कारण ही आज के युग में हमारे धर्म विषयक ज्ञान और मनोवृत्ति में पर्याप्त रूप में परिवर्तन हुआ। आज धर्म विरोधी अनेक मत पर सिर झुका गए हैं और धार्मिक ज्ञान में अस्पष्टता के कारण लोगों में विचारों की रूढ़िवादिता समाप्त होने लगी है। यही कारण है कि अब लोग एक दूसरे के धर्म की बात सुनने लगे हैं और धर्म समन्वय की बात भी करने लग गए हैं। अगला शीर्षक है आक्षेप। धर्म दर्शन के विरोध में कुछ ऐसे तर्क भी प्रस्तुत किए जाते हैं जिनका निराकरण करके भी इसकी उपयोगिता सिद्ध की जा सकती है। धर्म दर्शन के प्रति जो भी आक्षेप किए गए हैं वे यही सिद्ध करते हैं कि धर्म दर्शन का अध्ययन या तो संभव नहीं है या वह उपयोगी नहीं है। संभव इसलिए नहीं ज्ञात होता कि धर्म का ज्ञान दार्शनिक और वैज्ञानिक स्तर पर हो ही नहीं सकता, और उपयोगी इसलिए नहीं है कि धार्मिक मान्यताएं आस्था परक हैं। यदि उनका दार्शनिक और वैज्ञानिक अध्ययन होगा तो धर्म के प्रति आस्था समाप्त हो जाएगी। अब हम क्रमशः इस पर विचार करेंगे कि ये आक्षेप कहाँ तक उचित है। अगला शीर्षक है अनुभववाद तथा तर्कमूलक भाववाद द्वारा आक्षेप। चूंकि धार्मिक अनुभव इंद्रिय जन्य नहीं होते तथा रहस्यवादियों के कथनों की सार्थकता समर्थन योग्य नहीं है और न पारमार्थिक सत्ता का विवेचन ही किया जा सकता है, अतः इनकी प्रामाणिकता सिद्ध करना और सत्य असत्य की जांच करना आवश्यक नहीं है। धर्म दर्शन को केवल धार्मिक तथ्यों का विवरण देना चाहिए, उसकी व्याख्या करना उचित नहीं है। धर्म दर्शन की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है कि धर्म के तथ्यों का ज्ञान धर्म के अध्ययन की अन्य विधियों द्वारा हो जाता है। अगला शीर्षक है निराकरण। इसके अंतर्गत बिंदु अ है बौद्धिक निर्णय संभव है। जिस प्रकार अनुभववादी और तर्कमूलक भाववादी धर्म और परमार्थ के विषय में अपना एक निर्णय यह देते हैं कि परमार्थ का ज्ञान संभव नहीं है, उसी प्रकार धर्म दर्शन भी धार्मिक तथ्यों के विषय में एक बौद्धिक निर्णय तो दे ही सकता है। यह कार्य धर्म दर्शन बड़ी कुशलता से करता है। वह केवल तात्विक विवेचन प्रस्तुत करके अपना कार्य समाप्त करता है, जो धर्म के अध्ययन में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगला शीर्षक है बिंदु ब, धर्म दर्शन धार्मिक तथ्यों का ही नहीं अर्थ और मूल्य का ज्ञान प्रदान करता है। यदि कहा जाए कि धर्म का ज्ञान अन्य शाखाओं जैसे धर्म विज्ञान से हो जाता है, फिर धर्म दर्शन की क्या आवश्यकता है? तो इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि धर्म विज्ञान धार्मिक सत्यता की गहराई में नहीं पहुंच सकता। यह कार्य तो धर्म दर्शन ही कर सकता है, इसलिए धर्म दर्शन आवश्यक है। अगला शीर्षक है बिंदु स, धार्मिक चेतना की बाध्यता। मानव धार्मिक प्राणी है, मानव चेतना में धार्मिक स्पृहा समाहित है। वह धर्म को ज्ञान, भाव तथा क्रिया तीनों रूपों में स्वीकार करना चाहता है। धर्म दर्शन की विधि बौद्धिक, अंतर्ज्ञान मूलक तथा क्रिया मूलक है। यदि वह धर्म की व्याख्या इन विधियों से नहीं करता तो मनुष्य धर्म को स्वीकार करने में हिचक सकता है। अतः धर्म की दार्शनिक व्याख्या आवश्यक सिद्ध होती है। पृष्ठ संख्या 21। अगला शीर्षक है बिंदु द, धार्मिक सत्य सर्वातिशायी एवं अंतर्व्याप्त दोनों है। तर्कमूलक भाववादी धार्मिक सत्य को इंद्रियातीत मानते हैं, परंतु व्यवहारिक जगत यह सिद्ध करता है कि वे सत्य जगत में भी व्याप्त और अंतर्निहित है। व्यवहारिकता की इस सत्यता को बौद्धिक दृष्टि से समझाने का काम धर्म दर्शन ही कर सकता है, इसलिए धर्म दर्शन आवश्यक है। अगला शीर्षक है दूसरा है तथा कथित धार्मिक व्यक्तियों द्वारा आक्षेप। ऐसे धार्मिक व्यक्ति जिनकी धार्मिक आस्था केवल मानसिक अवधारणा तक ही सीमित है और जो धर्म में वस्तुगतता का प्रवेश नहीं पाते, वे यह आक्षेप करते हैं कि धर्म के दार्शनिक और वैज्ञानिक विवेचन से धर्म के प्रति आस्था समाप्त हो जाएगी, अतः धर्म दर्शन की कोई उपयोगिता नहीं है। अगला शीर्षक है निराकरण। इसके अंतर्गत शीर्षक है विचारशील व्यक्ति धर्म की बौद्धिक व्याख्या करेगा ही। उपर्युक्त आक्षेप निराधार है। धर्म कुछ ही लोगों का नहीं है। धर्म में जब तक चिंतनशीलता का प्रवेश नहीं होगा, वह कोरी मान्यता बनकर रह जाएगा। समाज का चिंतनशील व्यक्ति धर्म की जांच किए बिना उसे स्वीकार नहीं कर सकता। धर्म को स्वीकार करके उसका परीक्षण करना आवश्यक होता है। स्वामी विवेकानंद की यह उक्ति संभवतः इसी को चरितार्थ करती है। मंदिर में पैदा होना ठीक है, परंतु उसी में मरना अच्छा नहीं है। अर्थात धर्म जैसा का तैसा स्वीकार नहीं किया जा सकता, उसकी सत्यता असत्यता का ज्ञान आवश्यक है और यह कार्य करता है धर्म दर्शन। अतः धर्म दर्शन आवश्यक एवं उपयोगी है। अगला शीर्षक है तीसरा, धर्मशास्त्रियों द्वारा आक्षेप। इनका आक्षेप है कि धर्म श्रद्धा का विषय है, बुद्धि का नहीं। चूंकि धर्म दर्शन धर्म की बौद्धिक व्याख्या करता है, इसलिए वह धर्म के मर्म को प्राप्त करने में उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। शीर्षक है निराकरण। यह तो स्पष्ट है कि धर्म मानव चेतना के तीनों पक्षों को संतुष्ट करता है। यदि धर्म को आस्था तक ही सीमित किया जाएगा तो मनुष्य की बौद्धिक पिपासा कैसे शांत होगी। इसलिए धर्म दर्शन मनुष्य की बौद्धिक वृत्ति की संतुष्टि के लिए आवश्यक और उपयोगी है। इतना अवश्य है कि धर्म दर्शन को धर्म जैसे भाव प्रधान विषय की सावधानी पूर्वक समीक्षा करनी चाहिए। यदि धर्म का बौद्धिक विवेचन नहीं किया जाएगा तो धर्म में रूढ़ और अंधविश्वास भी प्रधान हो सकते हैं। इस दृष्टि से भी धर्म दर्शन आवश्यक और उपयोगी है। अगला शीर्षक है चौथा, विश्वजनीन धर्म के अभाव में धर्म दर्शन संभव नहीं है। कुछ विचारकों द्वारा यह आक्षेप किया जाता है कि विश्व में कोई एक सामान्य धर्म नाम की चीज नहीं है, फिर धर्म दर्शन की क्या आवश्यकता है। विश्व में धर्मों का अस्तित्व है न कि धर्म का, फिर धर्म दर्शन किस धर्म की बौद्धिक विवेचना करता है। सिद्ध होता है कि धर्म दर्शन किसी धर्म विशेष का ही विवेचन करता है, सामान्य धर्म का नहीं। इसका निराकरण है, यह आक्षेप निराधार और असंगत है, क्योंकि विश्व के विभिन्न धर्मों में कुछ तत्व ऐसे हैं जैसे ईश्वर, आत्मा, मूल्य आदि, जो सामान्य रूप से सब धर्मों में पाए जाते हैं। पृष्ठ संख्या 22। धर्म दर्शन उन्हीं की दार्शनिक व्याख्या करता है। इस युग में तो इसकी भी आशा की जाने लगी है कि एक विश्वजनीन धर्म की स्थापना होगी, फिर तो धर्म दर्शन की उपयोगिता को कम नहीं किया जा सकता। अगला शीर्षक है निष्कर्ष, धर्म दर्शन तर्क और विवेक के आधार पर धर्म की रहस्यमयता का ज्ञान कराकर धर्म की बहुत बड़ी सेवा करता है। धर्म दर्शन धर्म में विश्वास भी करता है और धर्म की तार्किक व्याख्या भी। डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में, केवल इसलिए कि हम तर्क में विश्वास करते हैं यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि सामने आने पर हमें किसी रहस्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार विज्ञान तर्क द्वारा रहस्यमय अनुभूति को असिद्ध करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार धार्मिक यथार्थता को विवेक सम्मत तो बताया ही जा सकता है, क्योंकि तर्क शुद्ध ज्ञान स्वयं हमें विधि या विज्ञान के राज्य से आश्चर्य, रहस्य या धर्म के राज्य में ले जा सकता है। धर्म दर्शन का यही कार्य है, यह विज्ञान और रहस्यपूर्ण धर्म का समन्वय करता है। अतः धर्म दर्शन का अध्ययन अत्यंत उपयोगी और आवश्यक है। अध्याय 1 समाप्त।